ایمان پر فاطمہ آیا ایمان پر فاطمہ آیا ایمان پر فاطمہ آیا الہی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں. بندے کی مرضی کہ وہ مجھ پر درود کم پڑھے یا زیادہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے تھے، مقام صفح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے، ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ اس قبر میں بیٹھا ہوا نظر آیا جس نے قبر کو بھر رکھا تھا. اسے چھوڑ کر ہم نے دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا ہے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اس مسئلے کا حل آپ ارشاد فرمائیں. صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا، اسے ان دونوں میں سے کسی بھی قبر میں دفن کر دو کہ خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورت حال ہوگی. بالآخر لوگوں نے اسی سانپ والی قبر میں اس کو دفن کر دیا. واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے برے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا، اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا اور پھر کمی کرنے کے پوری کرنے کے لیے اتنا ہی اس میں ملاوٹ کر دیا کرتا تھا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، روزمرہ کے معاملات اپنانے کے لیے ہمارے پاس بھی مختلف قسم کی ذمہ داریاں ملتی ہیں. اگرچہ کوئی بطور پیشہ نوکری کے طور پر ایسے کام میں مصروف ہوتا ہے کہ جس میں اس کو پاس امانتیں ہوتی ہیں، یا عام طور پر کہیں پر بھی انسان کوئی سی ایسی ذمہ داری پر آ جاتا ہے، گھریلو معاملات ہوئے، کاروباری معاملات ہوئے، ادارتی معاملات ہوئے، مسجدوں کی کمیٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یا دیگر بھی مختلف جگہوں پر اگر دیکھا جائے تو مختلف حیثیت سے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کہیں مال رکھا جاتا ہے تو کہیں مطلب منصب ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے، تو ان تمام چیزوں پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری کئی ایک ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری امانت بھی ہے، اور اس کی تعریف علماء جو بیان کرتے ہیں خیانت کے حوالے سے، کیونکہ امانت کی ضد خیانت، کہ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی امانت میں تصرف کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ و رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت. تو یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. انسان کہیں اگر اس طرح سے کہیں کوئی کسی منصب پر فائز ہو تو وہ اپنے معاملات پر غور و فکر کرے، احتیاط کرے کہ ہم اس معاملے میں کہیں پر بھی کوئی غیر ضروری تصرف نہ ہو جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کے گورنر میں سے کوئی حاضر ہوئے اور آپ سے گفتگو کرنے لگے، آپ حال احوال پوچھنے لگے کہ بتائیں آپ کیا مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، قیمتیں کیسی ہیں، جو ایک معلومات آپ لیا کرتے تھے. جب وہ ساری معلومات ہو گئیں، معاملات جو پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا، تو اب انہوں نے پوچھا کہ حضرت سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، گھر میں سب کیسے ہیں. تو جیسے انہوں نے گفتگو شروع کی، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جلتا ہوا چراغ بجھا دیا اور آواز دی کہ اندر سے دوسرا چراغ لایا جائے. چنانچہ گھر میں سے ایک معمولی سا چراغ لایا گیا. وہ چراغ جلانے کے بعد اب آپ نے پوچھا، جی بتائیں اب کیا کام ہے آپ کو؟ تو کہا، حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چراغ کیوں بجھا دیا گیا. تو کہا کہ یہ چراغ جو ہے یہ مسلمانوں کے مال سے جلایا جا رہا تھا، تو جب تک میں مسلمانوں کے امور کے معاملات دیکھ رہا تھا اس وقت تک یہ چراغ جلایا. اب چونکہ تم میری طبیعت پوچھ رہے ہو، میرے معاملات ڈسکس کریں گے، اس لیے میں نے اپنا ذاتی چراغ جلوایا ہے. تو یہ وہ احتیاطیں تھیں، یہ وہ انداز سے کام کرنے کے کہ جس میں کرنے والوں نے جب کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندی عطا فرمائی. سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی آج اگر ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوتا ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی اہم ایک وصف ہے، ایک کوالٹی ہے کہ جو انسان اپنے دل میں پیدا کرے، اور مسلمانوں کی یہ امتیازی شان ہے. جی ہاں، علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ امانت دار ہونا، امانت دار ہونا یہ مومن کی امتیازی شان ہے. قرآن پاک کے سورہ مومنون 18 پارے کی آیت نمبر 8 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، کہ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں. خلیفہ اعلی حضرت صدر اللہ فاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں تحریر فرماتے ہیں کہ خواہ وہ امانتیں اللہ کی ہوں یا خلق یعنی مخلوق کی، اور اسی طرح عہد خدا کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے. اور اس آیت کے تحت تفسیر سراط الجنان جلد 6 صفحہ 506 پر ہے کہ اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے دو وصف، دو کوالٹیز بیان ہوئی، کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی امانتوں کے بارے میں احتیاط کرنی ہے. پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو۔ تو اس کے تحت تفسیر صراط الجنان جلد 2 صفحہ 227 پر ہے کہ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دینا ہے، البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کر دیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ پاک، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ یعنی عہدہ ملتا ہے، بعض اوقات اہل موجود ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، چونکہ یہ میرا جاننے والا ہے، چونکہ یہ میرے اس سے تعلقات ہے، کیونکہ میری چاپلوسی کرتا ہے، چونکہ یہ مطلب اس طرح سے میری آؤ بھگت کرتا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا تو یہ بھی خائن ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ اس حدیث میں منافق کی تین ایسی علامتیں بیان کی گئیں جن کا تعلق قول، عمل اور نیت میں سے ایک ایک سے ہے۔ یعنی جھوٹ، یہ فساد قول ہے، خیانت فساد عمل ہے، اور وعدہ خلافی فساد نیت ہے۔ جو منافق ہوگا اس میں تین باتیں ضرور ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ منافق بھی ضرور ہو، جیسے کفار و مشرکین۔ اس لیے اگر کسی مسلمان میں یہ تین باتیں پائی جائیں اسے منافق کہنا جائز نہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں اس کی بڑی تاکیدیں ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو تم سے امانت داری کرے اس کی امانت ادا کرو، جو تم سے خیانت کرے اس سے تم خیانت نہ کرو۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ جو شخص تمہیں امین جان کر اپنے مال، راز، عزت و آبرو کو تمہارے سپرد کر دے، تم امین بن کر اسے دکھا دو کہ اس کے معاملے میں خیانت نہ کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث فتوے پر شامل ہو سکتی ہے اور تقوے پر بھی۔ فتوہ یہ ہے کہ خائن یعنی خیانت کرنے والے سے بقدر خیانت بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے تمہارے 100 روپے مار لیے تو جب کبھی وہ تمہارے پاس اپنی کچھ امانت یا قرض دے تو اپنا حق وضع کر کے باقی مال اسے دے دو۔ یہ وضع خیانت نہیں بلکہ اپنا حق وصول کرنا ہے۔ مگر تقوی یہ ہے کہ ایسے شخص سے بھی بدلے میں یہ معاملہ نہ کرے، اپنا حق علیحدہ مانگے مگر اس کا یہ حق پورا ادا کر دے۔ یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے۔ تو خیال رہے کہ کافر حربی کی بھی خیانت جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ان خون کے پیاسے دشمنوں کی امانتیں ادا کی جنہوں نے قتل کے ارادے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر گھیر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ چھوڑا اور خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما گئے کہ انہی لوگوں کی میرے پاس امانتیں ہیں، تو ادا کر کے مدینے آ جانا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے کسی کی تو ہم تو سنبھال کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جب کبھی کوئی موقع ملتا ہے تو دو دو ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہمارے اس سے اچھے تعلقات ہوئے ہم نے بہت سارے معاملات اس کے دیکھے سنبھالے، اس نے بھی ہم پر بھروسہ کیا اور بتایا، لیکن جہاں کہیں ایسی کوئی باتیں ہوتی ہیں تو معاملات بہت ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اور ایسا گھروں میں بھی ہوتا ہے، شادی اگر ٹوٹ گئی، طلاق ہو گئی، تو اب دیکھیں حالات ہمارے کیسے ہیں۔ منگنی ہوئی، تعلقات تھے تو ان کے جیسا اچھا کوئی نہیں تھا، اور جیسے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے جیسا برا کوئی نہیں ہوا۔ تو یہ کیسی عجیب و غریب حالتیں ہیں۔ بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ گھر میں جو ان کی زوجہ تھی ان سے کچھ معاملات پہ چپکلش چل رہی تھی، معاملات اچھے نہیں جا رہے تھے، तो किसी दोस्त ने पूछा कि हजरत क्या बात है, सुना है आजकल कुछ घर के हालात अच्छे नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि घर की औरत है, आपको क्या बताऊं, हैं घर के मामलात में आपसे क्या डिस्कस करूं कि ये बात करना ये अच्छा नहीं है। खैर बात बढ़ती गई यहां तक के तलाक हो गई। अब वो जानने वाला फिर मिला, हजरत अब तो घर टूट गया, तो मामला क्या हुए थे, क्या मसला हुआ था जो आगे बढ़ बढ़कर तलाक हो गई। तो फरमाया अब तो वो पराई औरत हो गई, उसके बारे में मैं क्या बात करूं। है कितनी आला जर्फ था इनका, किस कदर से एक दूसरे की इज्जतों की मुहाफिज थे, किस तरह से एक दूसरे की रास की बातों की मतलब अहमियत को समझते थे। लेकिन आज बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, जरा सा कोई खिलाफ मिजाज कुछ बात हो जाए तो हम तो यूं समझे कि ऐसे अननोन नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अननोन ईमेल आईडीज बना लेते हैं कि हमको कोई ना जाने। हम उसके ऐब, उसके जो भी मामला थे उसको जाहिर करते हैं ताकि ये रुसवा हो, ये जलील हो, इसकी इज्जतें कम हो, और हम अननोन पर्सन बनकर मुआशरे में इस किस्म के मामलात पर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। मगर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है, हैं? ये भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है। और बाद होकर जब ऐसी चीजें पर्दा फाश होता है तो इंसान बहुत ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का उसको सामना करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत की इज्जतें सुरखुरी नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की रब ताला हमें जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जब अमानत जाया कर दी जाए तो कयामत का इंतजार करो। अर्ज की गई जाया होना कैसे होगा, फरमाया जब काम ना अहलों के सिपुर्द कर दिया जाए तो कयामत का इंतजार करो। एक और हदीस में है, इस उम्मत से जो चीज सबसे पहले उठाई जाएंगी वो हया और अमानत है, बस तुम अल्लाह पाक से इन दोनों का सवाल करो। एक और रिवायत में है, किसी आदमी की नमाज और रोजा तुझे धोखे में ना डाल दे, जो शख्स चाहे रोजे रखे और जो शख्स चाहे नमाज पढ़े, लेकिन जो अमानतदार नहीं उसका दीन नहीं। एक और रिवायत में है, नाजायज जराए से रोजी हासिल करना खयानत है, बावजूद कुदरत अपने अहल को बुराई से ना बचाना भी खयानत है, अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी और अमानत का जज्बा ये पैदा करें कि हम अगर घर में ताल्लुक है हमारा, हमारे बच्चे हैं, बीवी है, घर बार है, जिनकी जिनके हम सरपरस्त हैं, हया के मामलात में, इन तमाम चीजों के मामलात में हमें एहतियात करनी चाहिए। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हालात बड़े अजीब और गरीब हैं। आज जरा जरा सी बात पर मतलब हम अपने घर बार को संभालने के लिए जनाब क्या करें पूरा नहीं होता, हम कैसे अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। तो याद रखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और इस्लाम में हलाल व तय्यब खाने की बड़ी अहमियत बयान की गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद परवरदिगार अज़्ज़ा वजल ने अपनी पाकीजा कलाम में हलाल और पाकीजा रोजी खाने के मुतालिक वाज़े एकामात इरशाद फरमाए। ज़ाहिर है जिसके पास ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि वो वफ के मामलात पर अमीन बनता है, उसके पास मिसाल चंदे की रकम आती है, उसके पास जैसे हमारे यहाँ मदन एहतियात बॉक्स के इस्लाम भाई मौजूद हैं, तो चूंकि ये हमारे यहाँ तरबियती सिलसिला होता है तो हम इन बातों को बयान करके इससे तरबियत हासिल करते हैं कि इसकी बड़ी अहमियत है कि अगर इस मामले में किसी भी तरह नफ्स और शैतान की शरारतों में आकर बंदा जो है वो इसमें खयानत का मुर्तकिब होता है। मदनी चैनल पर ना जाने कैसे ऐसे लोग भी होंगे जो मसाजिद की कमेटियों में होते हैं, उनके पास चंदे की रकम होती है, बाद औकात ये चंदे की रकम उठाकर आप हो सकते हैं घर पर ही लाते हो और घर पर कई कई दिन तक वो किसी थैली में ही बंद किया हुआ रखा हुआ हो। अब हमारी गफलत सुस्ती की वजह से वो चीजें जो है वो हमारे घर में इस्तेमाल हो जाती हो, घर की कई ऐसी चीजें जो मस्जिद की चीजें, वक्फ के इदारों की चीजें या आम तौर पर जिनको इस्तेमाल करने का हमें हक रही है वो घरों में ले आए, अब वो घरों में लाकर जनाब हमारे घरों पर जो है वो इस तरह की चीजें इस्तेमाल हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत की एक बात याद आ गई, क्या अल्लाह ताला ने इनको बरकत अता फरमाई, और क्या अमीर अहले सुन्नत की सोच देखें, कमाल है, कमाल की सोच है। यानी यहां तक हुआ इसी फैजान मदीना की बात कि ये गालिबन 93-94 की बात होगी या 92 की बात होगी, इसी फैजान मदीना की तामीरात का सिलसिला जारी था। और मुझे याद है कि फैजान मदीना में अमीर अहले सुन्नत ने एक मतलब बयान में फरमाया कि आज जब मैं घर गया तो अपने चप्पल जब मैंने उतारे और उठाकर मैं हाथ में उठाकर ऊपर की तरफ जाने लगा तो मुझे कुछ वजनी लगे, तो मैंने जब उस चप्पल को घुमाकर देखा तो उस दौर में मुझे याद है कि वो प्लास्टिक के ऐसे चप्पल आते थे जिसमें नीचे खाने बने हुए होते थे। तो कहा कि वो खानों में जो तामीरात के जो कंक्रीट होते हैं तो एक दाना जो है वो उस चप्पल में लगा हुआ था। तो मैं समझ गया कि चूंकि तामीराती काम हो रहा है तो मैं किसी पत्थर पर चलाऊंगा तो वो पत्थर जो वो खाने में लग गया, तो वो मैं घर ले आया, मैंने उसको उठाकर धोया और जेब में रख लिया। वापसी जब आज आया हूं तो मैंने उसके अंदर डाल दिया। तो मैं समझ गया कि ये इस तरह से ये मस्जिद की जो तामीराती जो काम है इसका हिस्सा मुझ घर पर चला गया, तो मैं इसको लेकर आया। फिर अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि आप जो सैकड़ों हजारों आते हैं और आजकल ऐसे ही चप्पल चल रहे हैं, अगर एक एक दाना भी ले जाओ आप लोग तो पता नहीं कितने ट्रक खाली हो जाते होंगे। तो मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत की एक तरबियत का एक मैंने अंदाज देखा था कि इस्लामी भाई जब फैदान मदीना की इन गलियों से गुजरते तो कुछ इस्लामी भाइयों को देखा जाता कि चप्पल उठा के देखते कि कोई ऐसा पत्थर लेकर तो नहीं जा रहे। तो इन चीजों की एहतियातें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये चीजें बरकत दिलाती हैं हमारी रोजी। अगरचे हम जो मुलाजमत कर रहे हैं, हम जहां काम कर रहे हैं, जो हमारा अपने सेठ से ताल्लुक हो गया कि भाई मैं आपको इतनी तनख्वाह दूंगा, आपने इतनी तनख्वाह लेनी है, अब उससे जायद अगर हम उससे छुपाकर उसकी आंखों में धूल झोंककर लेकर आते हैं तो अब खुद सोचें कि ये आमदनी कैसी रही, इस आमदनी को क्या कहा जाएगा। तो हलाल और तय्यब खाने के हवाले से कुरान पाक में वाज़े इरशाद है, सूरह माईदा आयत नंबर 88 में वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, और खाओ जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने रोजी दी हलाल पाकीजा, और डरो अल्लाह से जिस पर तुम्हें ईमान है। सूरह बकरा आयत नंबर 168 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज हलालन तय्यिबा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, ए लोगो खाओ जो कुछ जमीन में हलाल पाकीजा है और शैतान के कदम पर कदम ना रखो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो तफसीर सिरातुल जिनान में है कि हलाल और तय्यब से मुराद वो चीज है जो बजाते खुद भी हलाल है, जैसे बकरे का गोश्त, सब्जी, दाल वगैरह, और हमें हासिल भी जायज जराए से हो। जी हाँ, ये भी जरूरी है, हलाल तो है लेकिन जिस जरिए से हासिल हुआ वो भी जायज हो, यानी चोरी, रिश्वत, डकैती, खयानत वगैरह के जरिए ना हो। यहिया बिन मुआज रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं इताअत अल्लाह के खजानों में पोशीदा है, उसकी चाबी दुआ है, हलाल खाना उस चाबी के दंदाने हैं, अगर चाबी में दंदाने नहीं होंगे तो दरवाजा भी नहीं खुलेगा, जब खजाना नहीं खुलेगा तो उसके अंदर पोशीदा इताअत तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। फरमाते हैं अपने लुकमे की हिफाजत करो, अपने खाने को पाकीजा बनाओ ताकि जब तुम्हें मौत आए तो बुरे आमाल की स्याही की जगह नेक आमाल का नूर तुम्हारे सामने जाहिर हो, और अपने आजा को हराम खाने के गुनाह से रोके रखो ताकि ये हमेशा रहने वाली नेमतों से लज्जत पा सके। तो ये हलाल खाना ये बहुत बरकतें दिलाता है, बहुत बरकतें दिलाता है, हराम से बचें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुलू अशरबू हनी अम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ और पियो रचता हुआ सिला, यानी बदला उसका जो तुमने गुजरे दिनों में आगे भेजा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो हराम खाने से इजतनाब ना करे, जो हराम खाने से ना बचे, वो बहुत खसारे में रहेगा। जी हाँ, बहुत खसारे में रहेगा, क्योंकि हलाल की बरकतें हैं और हराम से बचना ये मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हमें रिस्क हलाल की बरकतें नसीब फरमाए। जो हराम खाने से इज्तनाब ना करे तो तवील अरसे तक भूखा रहने के बाद थोहड़ का कड़वा फल खाएगा, कैसा बदतरीन खाना होगा और इसका नुकसान कितना शदीद होगा। कि उलमा ने बाद रिवायतों में लिखा है कि जब ये खाना पेट के अंदर जाएगा, कि उसके ऊपर गर्म पानी पिलाया जाएगा, तो आते और ये सब चीजें काट कर पीछे के मकाम के हिस्से से बाहर निकल जाएंगी। तो मालूम हुआ कि हराम खाने की बड़ी नहुसते और हलाल खाने में बड़ी बरकतें हैं। जो मुसलमान रिस्क हलाल कमा कर अपने हेलो याल को खिलाता है, जी हाँ, जो हम कमाते हैं तो हम खुद कितना खाते हैं भाई। किसी ने अगर हराम से अपनी बिल्डिंगें बनाई, आसाइशों के जरिए बनाए, खाने पीने की चीजें घर पे लेके जा रहा है, आप बताएं क्या खुद खाएगा ये इतना? नहीं, उसकी औलाद खाएगी, उसके घर वाले खाएंगे। क्योंकि जो मुसलमान इसके हलाल कमाकर अपने अहलो याल को खिलाता है, वो पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजारता है। हलाल कमाने और खाने वालों के लोगों की नजरों में खास मकाम बन जाता है। हलाल कमाने और खाने वाले की कारोबार में बरकत होती है। हलाल कमाने और खाने वाले के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, उसकी दुआएं कबूल की जाती हैं। और हलाल कमाने और खाने वालों का, खिलाने वालों की क्या बरकतें हैं। हदीस पाक सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन तक हलाल खाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके दिल को मुनव्वर कर फरमा देगा, उसकी जबान पर हिकमत के चश्मे जारी फरमाएगा और दुनिया और आखरत में उसकी रहनुमाई फरमाएगा। हलाल रोजी, हलाल रोजी कमाए, तैयब साफ सुथरी रोजी हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हलाल कमाया फिर उसे खुद खाया या उस कमाई से लिबास पहना और अपने अलावा अल्लाह ताला की दीगर मखलूक यानी जैसे अपने अहलो याल दीगर लोगों को खिलाया पहनाया, तो उसका ये अमल उसके लिए बरकत व पाकीजगी है। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरा तो साहबे किराम अलीम रिदवान ने उसके फुर्तीले बदन की मजबूती और चुस्ती को देखा तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश इसका यह हाल अल्लाह की राह में होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यह शख्स अपने छोटे बच्चों के लिए रिस्क की तलाश में निकला है तो यह अल्लाह की राह में है, अगर यह शख्स अपने बूढ़े वालिदैन के लिए रिस्क की तलाश में निकला है तो भी ये अल्लाह की राह में है, अगर ये अपनी पाक दामनी के लिए रिस्क की तलाश में निकला है तो ये भी अल्लाह की राह में है, और अगर ये दिखावे और तफाखुर के लिए निकला है तो ये शैतान की राह में है। तो जो अपने घर बार को चलाने के लिए, अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करते हैं, जाहिर है जो भी फर्द है मुआशरे का, वो अपने घर बार को चलाने के लिए जाहिर कारोबार नौकरी जो भी पेशा इख्तियार करता है, भागदौड़ तो करता ही है ना, लेकिन इसमें रिस्क हलाल ये होना बहुत लाजिम है। क्योंकि जाहिर जो चोरी करता है वो भी तो कोशिश ही करता है ना, वो भी तो बिल्डिंगें चढ़ता है, वो भी तो ताले काटता है, वो भी तो पता नहीं रात जागता होगा कैसी कैसी प्लानिंग करता होगा। जो जेब काटता है, जेब कतरा जो होता है, वो भी तो कोई ना कोई हिसाब किताब बनाता ही होगा ना। लेकिन जो रिस्क हलाल कमाने के लिए कोशिश करता है, सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना साद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाया करे, दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल फरमाए। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने खाने को पाकीजा बनाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल हुआ करेंगी। हम देखें तो सही कि हम अपना मामला कैसा गुजार रहे हैं, हमारे मामले में कितनी एहतियातें, कितनी एहतियातें। एक मरतबा चंद बुजुर्ग बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए, रात का वक्त था, 40 अफराद थे। बैतुल मुकद्दस की मस्जिद के मेहराब के पास ये 40 अफराद हल्का लगाकर बैठ गए। इनमें जो इनके बड़े थे वो बीच में तशरीफ फरमा हुए, तो किसी ने आवाज दी कि हजरत इस मस्जिद में आज की रात हमारे साथ एक और शख्स भी अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि हां, वो इब्राहिम बिन अधम है, वो इब्राहिम बिन अधम है जो 40 साल से अपनी इबादत में लज्जत महसूस नहीं कर रहे। जब ये सुना, इब्राहिम बिन अधम कोने में इबादत में मसरूफ थे, ये भी आवाज सुनी तो फौरन अब हाजिर हुए और कहा कि हजरत वाकई यही बात है। क्या बात है? वाकई कई दिनों से अपनी इबादत में लज्जत नहीं पाता हूं, अब रूहानियत नहीं है मेरे पास, क्या वजह है? तो बुजुर्ग ने फरमाया कि याद रख करो, फुला दिन जब आप बसरा में खजूरें खरीद रहे थे तो एक खजूर जो है वो करीब पड़ी थी, आपने ये समझ कर कि ये खजूर भी मेरे यहां से गिरी है, आपने उठाकर उसको अपने माल में शामिल कर लिया, ये उसी खजूर की नहुसत है। आपको जैसे ही पता चला तो आपने बसरा का सफर इख्तियार किया ताकि जाकर उससे मुआफी तलाफी करा लें। क्या हमारी ऐसी सोच है? एक बुजुर्ग जब अपने सफर से अपने घर तशरीफ लाए, सामान खोला तो किसी का कलम सामान में से निकला जो आपने आर्यतन लिया था, तो वापस लौटाने के लिए सफर का कसद करने का इरादा कर लिया, ये मैं भूल कर ले आया। तो क्या हमारी ऐसी सोच है कि हम अगर कहीं जाएं किसी का कोई ऐसा माल, बल्कि यहां तो आंख बचाकर, सब्जी वाला अगर आंख बचाकर इधर उधर देख रहा हो तो एक दो चीजें और डाल लेते, ऐसा ही है ना माशरे में, नजर ही आ रहा है। तो ये मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इससे बचने का जहन बनाना है, बचने का जहन बनाना है, क्योंकि ये जो बाजार चीजें हैं ना, ये जो नेकियों की बरकतें, ये छोटी छोटी नेकियां समझ के हम छोड़ देते हैं, हो सकता है ये छोटी नेकी ही बहुत बड़ी बरकत दिलाने वाली हो, और बाद औकात ये मामूली नजर आने वाले गुनाह के यार क्या फर्क पड़ता है, चंद सिक्के ही तो है ना यार, छोड़ो इसका क्या हिसाब करना। हो सकता है ये चंद सिक्के ही हमारे हजारों लाखों की बर्बादी का सबब बन जाए, हमारे लाखों लाख हलाल तैयब की आमदनी में अगर चंद रुपए ही बेईमानी के और नाजायज जराए से इख्तियार करने वाले शामिल हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी बरकतें उठा कर ले जाएं। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दुनिया में जो भी चीज पैदा फरमाई, आखरत का नमूना इसी तरह दुनिया में पेश आने वाले मामलात भी उखरवी मामलात का नमूना है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जन्नत की नेमतें सिर्फ अपने नामों में दुनियावी अशिया के मुशाबे हैं, यानी जन्नत की नेमतों की हकीकत दुनियावी चीजों से मुख्तलिफ है। इसका सबब यह है कि अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों के जरिए उखरवी नेमतों का शौक दिलाया, दुनियावी आदाबात के जरिए आखरत के आदाबात से डराया है। दुनिया में जारी मामलात में से एक ये भी है कि जुल्म करने वाले को आखरत के बदले से पहले दुनिया ही में उसका जुल्म का बदला मिल जाता है। यूं ही दीगर गुनाहों का इर्तिकाब करने वालों के साथ भी यही मामला होता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो बुराई करेगा उसका बदला पाएगा, इसका यही मफहूम है। यानी बाद औकात गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला शख्स अपने बदन और माल को सलामत देखकर गुमान करता है कि उसे कोई सजा नहीं मिल रही, हालांकि उसकी अपनी सजा से गाफिल होना भी एक किस्म की सजा है। चुनाचे हुक्मा फरमाते हैं, एक गुनाह के बाद दूसरे गुनाह में मुबतला होना यह पहले गुनाह की सजा है। एक गुनाह के बाद दूसरे गुनाह में मुबतला होना ये पहले गुनाह की सजा है, जबकि एक नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक मिलना ये नेकी का बदला है। बाद औकात गुनाहों की जल्द मिलने वाली सजा हिस्सी और जाहिरी नहीं बल्कि मानवी एतबार से होती है, जैसा कि बनी इसराइल के एक इबादत गुजार शख्स ने, बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, बनी इसराइल के एक इबादत गुजार शख्स ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी कितनी नाफरमानियां की हैं लेकिन तू मुझे सजा नहीं देता। ए मौला, मैंने तेरी इतनी नाफरमानियां की हैं लेकिन तू मुझे सजा नहीं देता। जवाब दिया गया, मैं तुझे सजा देता हूं लेकिन तुझे इसका एहसास नहीं होता। क्या मैंने तुझे मुनाजात की हलावत यानी मिठास से महरूम नहीं कर दिया है? हम देखे बाज औकात हमने अपने हाथों से मस्जिदें बनाई, अपना माल खर्च किया, अपना वक्त दिया, लेकिन आज उस मस्जिद में जाने की तौफीक ही नहीं है। नहीं, जमात से नमाज पढ़ने नहीं जाते, मेले में रहते हैं। आपने मस्जिद बनाई, आपने इतना अजीम उस शान लोगों को सहूलतें दिलाई, लेकिन क्या बात है कि आज आपके कदम नहीं उठते हैं। हमने इतने मदारिस बनाए, इतना कुछ किया, लेकिन खुद आज तक देखकर भी कुरान पढ़ना नहीं सीखा हमने। हम अपने आप को ये थोड़ा सा डराए कि कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। ये जो इबादतों की लज्जत, मैं जनाब पहले दर्स दिया करता था, अब दर्स नहीं देता। अरे दर्स नहीं देता या दर्स की नेमत उससे छीन ली गई? मैं पहले इज्तिमा में आता था, अब इज्तिमा में नहीं आता। अरे तू इज्तिमा में नहीं आता या तुझे इज्तिमा से निकाल दिया गया? क्या हुआ? सोचे, गौर करें, क्या हमसे क्या इबादत की लज्जत नहीं छीनी गई? जो रूहानियत, जो रिक्कत तारी होती थी, जो दुआओं में आंसू बहते थे, आज ये सब क्या हो गया? क्या आज जो इबादतों की लज्जतें थी, जो पहले नफली रोजे, जनाब रजब शाबान का महीना क्या आता था, इबादत की बहुत तेजी हो जाती थी, आज तो पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कोई नफली रोजा नहीं है। हिफ्ज किया है, कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, जनाब कहां तरावी पढ़ा रहे? नहीं जनाब, मैं तो इस साल समाज कर रहा हूं। आप खुद सोचिए, समाज करने की पोजीशन पे क्यों पहुंचे हैं? अपने आप से पूछे ना, ये मेरी मसरूफियत तो, ये मेरा ये तो, इन सारे मामलों में अपने आप को डराना चाहिए कि इसका ताल्लुक नेकी और गुनाह से बहुत ज्यादा होता है। कि नेकियों पर अमल करना ये इबादत की लज्जतों को दिलाता है, रगबत बढ़ जाती है, कदम आगे बढ़ते जाते हैं, और गुनाहों की नहूसत कैसी कि तौफीकें ही जो छीन ली जाती हैं। तो जो शख्स सजा की इस किस्म में गौर करेगा, इस किस्म की गौर में कि बजाय जमीन नहीं फटी, आसमान नहीं टूट पड़ा, लेकिन मुझसे जो इबादत की लज्जतें थी, जो दुआओं की रिक्कतें थी, जो नेकियों की तरफ दिल माइल होता था, आज वो सब नेमतें मुझसे छीन ली गई, तो उसे अपनी ताक में पाएगा। यहां तक के हजरत सईदना वहब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में अर्ज की गई, क्या गुनाह करने वाला इताअत की लज्जत पाता है? इरशाद फरमाया, गुनाह का इर्तिकाब करने वाला तो दूर, गुनाह का इरादा करने वाला भी इताअत की लज्जत नहीं पा सकता। कि जो शख्स अपनी निगाहों को आजाद छोड़ता है, यानी बद निगाही से नहीं बच पाता, वो निगाह इबरत से महरूम हो जाता है, जबान की हिफाजत ना करने वाला दिल की सफाई से महरूम हो जाता है, खाने के मामलात में शुबहात से ना बचने वाला दिल का दिल सियाह हो जाता है, वो रात में इबादत और मुनाजात और दुआ की हलावत से महरूम रहता है। ये एक ऐसा मामला है कि नफ्स का मुहासबा करने वाले हजरात इससे वाकिफ होते हैं। गुनाहों की जल्द सजा मिलने की तरह नेकियों का मामला भी है कि उनकी जजा भी जल्द दुनिया में ही मिल जाती है। जैसा कि हदीस कुदसी में है कि औरत की तरफ देखना शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है, जिसने मेरी रिजा के हुसूल के लिए इसे तर्क किया, मैं उसे ऐसा ईमान अता करूंगा जिसकी मिठास वो अपने दिल में पाएगा। हजरत सैयदना उस्मान नेशापुरी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, मैं नमाज जुमा के लिए जा रहा था, मेरे जूते का तस्मा टूट गया। मैं नमाज जुमा के लिए जा रहा था, मेरे जूते का तस्मा टूट गया। मैं उसे दुरुस्त करने के लिए ठहरा, फिर मैंने कहा, यह तस्मा इसलिए टूटा क्योंकि मैंने गुस्ले जुमा नहीं किया। तो हम गौर करें और सोचें कि कई ऐसे मामलात हैं कि जिससे हम बहुत दूर हो गए। कुरान पाक पढ़ना सीखा था, अपने आप से पूछे ना, कब आखिरी दफा पढ़ा था? ये नेमत क्यों छिन जाती है? ये तौफीकें क्यों छीन जाती है, नेकियों की तरफ आखिर रगबत क्यों नहीं मिलती। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपने मामलात में बिलखसूस जो अमानतों के हवाले से मैंने अर्ज किया, इनके बारे में अपने आप को डराते रहें, एहसास दिलाते रहें कि जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको कमा हक हूँ पूरा करूं। मदनी चैनल के नाजरीन भी गौर करें, अमीर अहले सुन्नत बारहा इस पर अपने मदनी मुजाकरों में बातें इरशाद फरमाते हैं कि आप इदारे से वाबस्ता हैं, वहां के कलम लिए आपने जेब में रख लिया, वहां के कागज इस्तेमाल किए अपने जाती इस्तेमाल के लिए लाए। मुझे याद एक मरतबा अमीर अहले सुन्नत, बहुत पुरानी बात है जब ये मोबाइल का इतना आम इस्तेमाल नहीं था, तो अमीर अहले सुन्नत का मुझे पैगाम मिला कि शहजादा हुजूर जानशीन अमीर अहले सुन्नत, तो उनको तलाश करना था, फैजान मदीना में वो थे, कहां थे पता नहीं था। तो किसी ने कहा कि हजरत ऐसा करते हैं ऑपरेटर को कह देते हैं वो तलाश कर लेंगे क्योंकि उनके पास सबके नंबर है तो ढूंढ लेंगे। तो आपने फरमाया कि उनसे इस वक्त मुझे अपना काम है और ये ऑपरेटर जो है ना ये वफ का अजीर है, ये इदारे का अजीर है, मैं इसे अपना काम कैसे करा सकता हूं। नहीं लिया। इतना बड़ा मकतबतुल मदीना जो अमीर अहले सुन्नत के अपने जो है वो किताबी रिसाले बेच बेचकर आज कहां से कहां पहुंच गया, एक रुपया नहीं लेते, बल्कि यहां तक के मकतबतुल मदीना से एक शॉपर तक आप अपने जाती इस्तेमाल के लिए नहीं मंगवाते। खुद फरमाते कि मैं मदनी चैनल पर जब आता हूं तो मैं उनकी चाय भी नहीं पीता हूं, क्यों, कहीं ऐसा ना हो ये चाय इवज हो जाए, मैं तो अल्लाह की रिजा के लिए काम कर रहा हूं। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये एहतियातें करने में जो बरकतें जो लज्जतें मिलेंगी इसे वही समझ सकता है जो इस पर एहतियात करता हो। इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से आखिर में बड़ी प्यारी बात अर्ज करता हूं। एक मरतबा रिस्क हलाल कमाने के लिए फरमाते कि तरतूस नामी शहर की तरफ रवाना हुआ, वहां पहुंचा तो एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे अंगूरों के बाग की देखभाल करनी है, तैयार हो? आपने फरमाया हाँ, और खूब मेहनत लगन के साथ बाग में काम करता रहा। एक मरतबा बाग का मालिक जो अपने दोस्तों के साथ आया और कहा कि जरा बेहतरीन किस्म के अंगूर तोड़ के लाओ, तो मैं काफी मिकदार में अंगूर लाकर दे दिए। तो मालिक ने जब अंगूर का दाना चखा तो खट्टा था, तो उसने मुझसे कहा कि बागबान इतने अफसोस की बात है, इतने अरसे से तुम हो और अब तक तुम्हें अंगूरों की पहचान नहीं कि कौन सा खट्टा है कौन सा मीठा है, यहां तक तुम तो रात दिन यहां रहते हो खाते होगे। तो मैंने बाग के मालिक से कहा कि अल्लाह की कसम मैंने आज तक तुम्हारे इस बाग से अंगूर का एक दाना भी नहीं चखा है, मैं तो देखभाल करने के लिए आया हूं, खाने के लिए थोड़ी आया हूं। ये सुनकर बाग का मालिक अपने दोस्तों से कहने लगा क्या इससे भी कोई अजीब बात हो सकती है कि एक शख्स काफी अरसे तक इस बाग की ईमानदारी से रखवाली करता रहे, एक दाना भी ना खाए, ये शख्स तो इब्राहिम बिन आदम की तरह मुत्तकी और परहेजगार मालूम होता है। तो बाद में पता चला ये खुद ही काम कर रहे हैं यहां पर। तो ये अंदाज असलाफ का जो बुजुर्गों का सीरत में मिलता है, एक काश कि हम सब इस पर अमल करने वाले बन जाएं। जब अमल करेंगे तो अपने आप में भी, अपने घर बार में भी, अपनी औलाद में भी इसकी बरकतें पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी जल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।